ओम शांति। किसी राजा को ये प्रश्न था कि मेरा जो इकलौता पुत्र है वो उत्तराधिकारी होने के योग्य है या नहीं, ये मैं कैसे निश्चिंत करूं। उसने अपने गुरु से पूछा। गुरु ने कहा उसे अपने राज्य से निकाल दो। राजा ने पूछा इतनी कठोर बात उससे मैं कहूं क्या। गुरु ने कहा बस उससे कह दो यहां से हमेशा के लिए चले जाओ, अब तुम राजकुमार नहीं। राजा पूछता है कोई दूसरा मार्ग। गुरु कहता है करना है तो करो या तो छोड़ो। राजा अपने बेटे को राज्य से निकाल देता है, दर बदर भटकता है वो राजकुमार। उसके पास कोई भी कला नहीं है, उसे कोई आर्ट आती नहीं है, और कुछ समय में वो जैसे भिखारी बन जाता है, यहां वहां भटकता है। रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, भिक्षा पात्र लिए हुए किसी और राज्य में, किसी सुदूर प्रांत में भटक रहा है। एक दुख था, एक हर्ट, एक फीलिंग, वो भी धीरे धीरे जाती रही, और कुछ वर्षों बाद उसे पूर्ण विस्मरण हो गया कि मैं भी कभी राजकुमार था। भिखारियों के समूह में वो रहता था, और मौसम और वातावरण ऐसा था कि उसे याद ही नहीं आया कि मैं भी कभी राजकुमार था। वो स्वयं को भिखारी ही समझता रहा और भीख मांगता रहा। कई कई वर्ष बीत गए और एक दिन किसी दुकान के सामने वो भिक्षा पात्र लिए हुए भीख मांग रहा था कि अचानक एक स्वर्ण रथ आ जाता है। उसमें से एक व्यक्ति उतरता है जो उसी उसके ही राज्य का मंत्री था, और वो मंत्री नजदीक आता है, वो लड़का खड़ा है भिखारी, फटे हुए वस्त्र है, और वो मंत्री उसके पैरों में अपना सिर रखता है, वंदन करता है, और एक क्षण में राजकुमार को याद आ जाता है। अब तक सब कुछ भूल गया था, भीख मांगते मांगते, अभ्यास करते करते, अभ्यस्त होते होते स्वरूप स्वाभाविक हो गया था। अचानक उसने कहा कि आप अब तक कहां थे। वहां के जो लोग थे, वो जो दुकानदार था और इर्द गिर्द जो लोग थे, उन सब ने देखा कि इसकी आवाज में अचानक से परिवर्तन आ गया है। अब वो भिखारी वाली आवाज नहीं रही। वो मंत्री कहता है तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, राजा मृत्युशैया पर है, किसी भी वक्त जा सकते हैं। तुम्हें यहां भेजने का प्रयोजन इसलिए था ताकि तुम जब कभी राजा बनो तो जान सको अस्तित्व की, जो सबसे निचली कड़ी है भिखारी की, जहां कुछ भी तुम्हारे पास नहीं होता है, वो भिखारी भी एक मनुष्य है। तुम ये जान सको, और राजा होने के बावजूद भी सबकी समान रूप से पालना कर सको, इसलिए तुम्हें भेजा गया था। वो राजकुमार कहता है, मेरे वस्त्र कहां है? आवाज में चेंज है। वो कटोरा फेंक देता है, राजसी वस्त्र पहनता है, हाथ इस तरह, और चलने लगता है जैसे कभी भिखारी था ही नहीं। रथ पर बैठता है और अपने राज्य में आता है। ऐसे पूछता है मंत्री से हर बात को, जैसे वो ही हमेशा का राजा रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया? स्मृति आ गई। स्मृति क्या आ गई? कि तुम भिखारी नहीं, अमृतस्य पुत्रा, अमृत की तो संतान है। यू आर सन ऑफ किंग नॉट बेगर्स, तुम भिखारी नहीं। स्मृति आ गई, और स्मृति आते ही सब कुछ बदल गया। अब तक विस्मृति थी, ऑब्लिवियन, फॉरगेटफुलनेस की स्टेज, जिसमें वो चल रहा था, और मौसम ही ऐसा था। स्मृति के लिए मौसम की आवश्यकता है, स्मृति के लिए वायुमंडल की आवश्यकता है। उस वायुमंडल में आते ही उसकी स्मृति विस्मृति हो गई थी। भिखारियों के साथ रहते रहते स्वयं भी भिखारी बन गया था, और अचानक स्मृति जाग उठी। तो मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है? स्मृति। और स्मृति अर्थात, स्मृति शब्द का क्या अर्थ है? स्मृति अर्थात क्या? याद अर्थात क्या? मेमोरी अर्थात क्या? याददाश्त अर्थात क्या? स्मरण अर्थात क्या? रिमेम्बरिंग अर्थात क्या? अलग अलग शब्द है। जैसे दादी जानकी, एक है प्रेम, एक है प्रीत, एक है स्नेह, एक है उल्फत, एक है लव, एक है प्यार। कितने एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ बताते थे। एक है याद, एक है याददाश्त, एक होती है मेमोरी, याद करना, भूल जाता है फिर याद करना, वो है याददाश्त। स्मृति का एक अर्थ है मेमोरी, बड़ा उथला उथला अर्थ। स्मृति का एक अर्थ है याद, किसी को याद करना, रिमेम्बरेंस। स्मृति का एक अर्थ है शास्त्र, जो योगियों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने शास्त्र लिखे। मनुस्मृति, मनुस्मृति धर्मशास्त्र। स्मृति अर्थात छंद है वो व्याकरण में, स्मृति अर्थात भाषा में अलंकार, स्मृति अर्थात काव्य शास्त्र में वो संसारी भाव। अलग अलग अर्थ है स्मृति के, अलग अलग धर्मों में अलग अलग अर्थ है। इंग्लिश में शब्द रिमेम्बरेंस न प्रयोग करके, याद के लिए रिमेम्बरेंस प्रयोग किया जाता है, पर स्मृति के लिए अवेयरनेस। तो ये कहा जा सकता है कि स्मृति अर्थात याद प्लस अवेयरनेस, ये दो चीजें जब एक हो जाएगी तो स्मृति। याद है, रिमेम्बरेंस है, परंतु साथ में अवेयरनेस है। ये दोनों मिलकर स्मृति बनती। एक शब्द है सिमरन, बार बार याद करना। एक है सुरति, याद करना। मनुष्य जीवन की क्या विशेषता है? स्मृति। स्मृति क्या है? बीज। तो आज कौन किसको देख रहा है? समर्थ बाप किसको देख रहा है? समर्थ बच्चों को। समर्थ कैसे बन गए? ये सामर्थ्य कहां से आई? एक ही स्मृति से आई। कौन सी वो स्मृति है? तुम ये नहीं, तुम वो हो, तत्वमसि, thou art that, तुम शरीर नहीं, ये कलेवर तुम नहीं, परंतु तुम वो हो जो दिखाई नहीं देता, जो दिव्य है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो सनातन है, जो नित्य है, जो आनंद स्वरूप है, जो सच्चित आनंद है, वो तुम हो। इतनी स्मृति दिलाई और क्या क्या हो गया? चार पांच बातें हो गई। सबसे पहला, तुम्हारा जीवन कैसा हो गया? समर्थी जीवन, अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात सफलता संपन्न, अर्थात अलौकिक, अर्थात चौथा, जीवन कैसे हो गया तुम्हारा? अलौकिक, सफलता संपन्न, श्रेष्ठ और चौथा क्या? सुखमय। क्या ऐसा है? श्रेष्ठ ठीक है, अलौकिक वो भी ठीक है, सुखमय थोड़ा, सुखमय और कभी कभी दुखमय, सफलता संपन्न कभी कभी और कभी कभी कम सफलता संपन्न। तो स्मृति आते ही क्या हो गया? सबसे पहला जीवन समर्थ हो गया। स्मृति आते ही क्या हो गया? जैसी स्मृति वैसी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्थिति, सब कुछ चेंज हो गया। इसके लिए काम किस पर करना है? स्मृति पर काम करना है। कर्मों पर काम नहीं करना है, दृष्टि वृत्ति पर काम नहीं करना है, काम बीज पर करना है। बीज को परिवर्तन कर दो तो बाकी सब अपने आप चेंज हो जाएगा। तीसरा, ये स्मृति आते ही तुम क्या बन गए? मास्टर सर्वशक्तिवान। और मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात परिस्थिति, विघ्न, समस्या, मुश्किलें, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, ये सब क्या लगे? एक दो तीन, ऐसा फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले खेल, जो कुछ हो रहा है वो क्या है? खेल। ये नाटक की खेल है। ये खेल किसका है? स्मृति का है, विस्मृति का है, जीत का है, पराजय का है, पुण्य का है, पाप का है। ये सृष्टि चक्र किसका नाटक है? और उतरती कला और चढ़ती कला, राइज और फॉल का है। खेल चालू है, कार्टून शो है, मिकी माउस का खेल चल रहा है। जो कुछ हो रहा है क्या हो रहा है? खेल। इस सृष्टि को, इस नाटक को, इस संसार को बार बार साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखने का अभ्यास। रात दिन पूरा हुआ, रात को सोते समय, सोते सोते साक्षी 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 की साधना करते करते सो जाना, ताकि उठोगे सुबह तो भी कौन सा शब्द याद आएगा? साक्षी। मैं साक्षी हूं। जो कुछ दिन भर हुआ उससे अप्रभावित, सुख के संसार में आए हो, दुख की क्या तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती? लहर तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती, अनटच्ड। तो सबसे पहले जो कुछ हो रहा है उसको क्या समझना? खेल। विघ्न, परिस्थिति, समस्या, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है और हमसे संबंधित जो लोग हैं उनके साथ जो हो रहा है वो सब क्या है? खेल, स्वप्न, स्वप्न में स्वप्न। तो सबसे पहला खेल, दूसरा साइट सीन्स। क्या है सारे? साइट सीन्स है। किसी ट्रेन से हम जा रहे हो और चारों रेगिस्तान ही रेगिस्तान, कुछ भी चेंज नहीं है, तो कितना बोर हो जाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए? एक है फ्लाइट से जाना, एक है ट्रेन से जाना, एक है बाइक से जाना, एक है बैलगाड़ी से जाना और एक है पैदल। ट्रेकिंग के लिए जाते हैं ना, कैसे जाते हैं? एंजॉय करते करते, देखते हुए। तो इनको क्या समझना है? ये सीन सिनेरिया है, ये आनी ही है, आनी ही चाहिए। कुछ ना कुछ होते ही रहे, नहीं तो परीक्षा कैसे होगी? हमने जो ज्ञान योग धारण किया है वो कैसे पता चलेगा कि हम उसमें पास है या फेल? इसलिए क्या समझना है? ये सब जो हो रहा है, सब कुछ, सब साइट सीन्स है, सब अनित्य है। अभी है, कल नहीं है, थोड़ी देर रहेगा फिर खत्म हो जाएगा, नश्वर है, मरण धर्म है। जो भी परिस्थिति आ रही है सदा काल के लिए नहीं आ रही है। परिस्थिति आ किसके लिए रही है? जाने के लिए। किस लिए आ रही है? वापस जाने के लिए। और जाते जाते क्या देखे जा रही है? एक पाठ देखे जा रही है, हमें सिखा कर जा रही है, अनुभव देके जा रही है, मास्टर विघ्न विनाशक की डिग्री देकर जा रही है। अनुभवी। इसलिए जो कुछ हो रहा है एक्सेप्टेंस, जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, लोग विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ग्लानी कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, बीमारी आ रही है, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, स्वयं की बीमारी, जो कुछ हो रहा है सब क्या है? साइट सीन्स, साक्षी फिर से। और तीसरा रास्ते के नजारे अर्थात साइट सीन। तीसरा नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है, नो सरप्राइज, कुछ भी होने दो, नया कुछ भी नहीं है उसमें, सब वही है, घिसा पिटा पुराना, बहुत बार हो चुका है, बहुत बार देख चुके हैं, पहली बार नहीं हो रहा है ये। तो ये तीन चीजें याद रखनी है आज की मुरली से, समस्या, परिस्थिति, विघ्न, माया, इवन विकार आया, एक है उससे दुखी हो जाना, ये सोचना ये क्यों आया, और दुखी होते रहना और गिल्ट कॉन्शियस में जाते रहना। एक है वो आया चला गया, जो सीखना था सीख लिया, हम साक्षी है। तो खेल, दूसरा साइट सीन और तीसरा कुछ भी नया नहीं है। स्मृति, बार बार स्वयं को याद दिलाते रहना। स्मृति को पुष्ट कैसे करें? ये एक चिंतन का विषय है। मुरली में, इस मुरली में इसका उत्तर नहीं है। स्मृति से क्या क्या होता है इसका वर्णन है। ज्ञान में कौन सी स्मृति रखनी चाहिए, योग में कौन सी स्मृति, धारणा में कौन सी स्मृति, सेवा में कौन सी स्मृति, अंतिम पेपर क्या होगा, पर स्मृति को परिपक्व कैसे किया जाए, स्मृति स्वरूप कैसे बना जाए, ये एक चिंतन का विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्मृति बाबा ने जो दिलाई उससे क्या क्या होता है। सबसे पहले समर्थ जीवन बन गया, दूसरा क्या हो गया, जैसी स्मृति थी वैसी ही स्थिति, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ बन गया। तीसरा मास्टर सर्वशक्तिवान, और मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात खेल, साइट सीन्स और नथिंग न्यू, कुछ भी हो जाने दो, कुछ भी, नथिंग न्यू। पहुंचा था। जो स्वयं स्मृति स्वरूप है वही दूसरों को स्मृति स्वरूप बना सकते हैं। जो स्वयं ही याद में नहीं वो दूसरों को कैसे याद दिला सकते हैं। जिन्होंने स्वयं ही किसी विकार को नहीं जीता वो दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि इस विकार को छोड़ दो। जो स्वयं ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं वो दूसरों को प्यूरिटी की शिक्षा कैसे दे सकते हैं। जो स्वयं निर्विकार नहीं वो निर्विकारिता की शिक्षा कैसे दे सकते हैं। तो सारा पुरुषार्थ खुद पर, सारा पुरुषार्थ स्वयं पर। अंधेरी रात में रोज रात्रि एक युवक दिखने में तपस्वी है, योगी है, अंधेरे में जाता है, वहां एक नदी है, नदी के किनारे बैठता है, कई घंटों तक बैठा रहता है और वापस लौटता है। नदी के पास जो बड़ा सा बंगला है वहां जो पहरेदार है, जो वॉचमैन है, रोज देखता है इस युवक को कि ये उसी समय जाता है, रात को 8-10 बजे निकलता है और वहां से 2-3 बजे वापस लौटता है, कभी कभी सुबह लौटता है। वो करता क्या है उस नदी के पास? एक दिन उस योगी को वो पकड़ लेता है, कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पहले बताओ तुम करते क्या हो। वो योगी कहता है करते क्या हो, तो ये तो तुम जानते हो। कहते कैसे? वो योगी कहता मुझे पता है तुम रोज मेरा पीछा करते हो, और मुझे ये भी पता है कि मैं वहां बैठता हूं तो तुम मुझे छुपके से देखते हो। वो कहता है हां ये सही है, पर तुम करते क्या हो? वो योगी पूछता है तुम क्या करते हो? वो कहता है वहां जो बड़ा बंगला है मैं वॉचमैन हूं, पहरा देता हूं। वो योगी कहता है यही तो मैं भी करता हूं। वो कहते हैं कैसे? वो कहता है तुम बाहर पहरा देते हो, मैं भीतर पहरा देता हूं। और भीतर पहरा देते देते उस होश की अवस्था में घंटों बीत जाते हैं, अपने आप को ही देखते रहता हूं। मुझे ना झील देखनी है ना वो रात का सन्नाटा मुझे लुभाता है, मुझे लुभाता है अपने भीतर का संसार। बाहर तो सन्नाटा है, बाहर मौन है, परंतु उस मौन में मैं भीतर जाता हूं और खुद को देखता हूं, मैं भी वॉचमैन ही हूं। तो क्या करना है? खुद को देखना है। जो कुछ हो रहा है उसके लिए ज्ञानी हमेशा स्वयं को दोषी ठहराता है और अज्ञानी दूसरों को दोषी ठहराता है, और क्योंकि अज्ञानी दूसरों को दोषी ठहराता है वो दोष हमेशा उसके साथ रहता है, परंतु ज्ञानी देख लेता है यहां पर किसी और का कुछ दोष है ही नहीं, मेरे ही अपने कर्म मुझे यहां वहां घुमा रहे हैं। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ, वो सब कुछ मेरा ही किया धरा है, मैं ही स्रोत हूं उसका, मेरा ही किया हुआ वापस मुझ तक आ रहा है। और धीरे धीरे ज्ञानी अपने उस दोष से भी मुक्त हो जाता है। ऐसी पैनी अंतर्दृष्टि वहां फिर प्रज्ञा जागती है। मन सूक्ष्म होते जाता है, संसार में रहते रहते मन स्थूल हो जाता है, विचार करने बैठो तो विचार नहीं कर पाते, चिंतन करने बैठो तो चिंतन नहीं कर पाते। इसके लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए, और इसके लिए चाहिए परमात्म स्थान। परमात्म स्थान पर आने का फल मिलेगा, चाहे तुम जानो या ना जानो, कभी ना कभी वो मिलेगा। और आप सब अब किधर आ गए? परमात्मा स्थान पर आ गए ना, तो आ गए तो अभी से मौन धारण कर लो, एक दूसरे से बात करते हुए भट्टिया नहीं हो सकती। मोबाइल स्विच्ड ऑफ अगले 3 दिनों के लिए, साइलेंट नहीं, वाइब्रेट नहीं, स्विच ऑफ। एक दूसरे से बात करते हुए भी तपस्या नहीं हो सकती, संपूर्ण मौन। जिस दिन भट्टी पूरी होगी उसी दिन मौन को खोलना, तो ही जिस स्थान पर आए हैं वहां से कुछ ले जा सकेंगे, अन्यथा अध्यात्म के जो सूक्ष्म अनुभव होने चाहिए वो नहीं होंगे। सभी स्थिर आत्मिक स्वरूप में स्थित, समर्पण। इस स्मृति ने और एक चीज कर दी, संसारी आत्माओं के संग रहते हुए भी मन कहां रहता है? अलौकिक संसार में, ईश्वरीय संसार में। आगे बहनों से मुलाकात, टीचर्स क्या हो गए? न्यारे, दिल्ली जोन। न्यारे अर्थात डिटैच्ड, और जो डिटैच्ड है, जो न्यारे है, वही क्या बन जाते हैं? बाप के प्यारे। और ये परमात्मा प्रेम क्या है? छत्र छाया, नशा है, रूहानी फकूर है कि हम छत्र छाया में है, ईश्वरीय छत्र छाया में है। जहां मैं जा रहा हूं, बाबा की छत्र छाया साथ साथ है, सेफ है, कोई क्या कर सकेगा? अभिमान नहीं, बॉडी कॉन्शियस नहीं, अहंकार नहीं, परंतु नशा है, विघ्न नहीं। फिर तो जहां स्मृति है वहां जीवन समर्थ, जहां स्मृति है वहां जैसी स्मृति वैसी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्थिति, सृष्टि, सब कुछ। जैसी जैसा स्मृति परिवर्तन हो गया तो क्या बन गए? मास्टर सर्वशक्तिमान। स्मृति परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया? इस संसार में रहते हुए भी, लौकिक संसार में रहते हुए भी मन कहां लगा रहता है? अलौकिक संसार में। तो सबका आधार क्या हुआ? बीज क्या है? स्मृति। तो स्मृति पर काम करना है। तो चार चीजों की स्मृति दिलाई। ज्ञान की स्मृति क्या? रचता रचना। ज्ञान की स्मृति क्या? अनादि क्या, आदि क्या, वर्तमान क्या? पांच स्वरूप, अनादि, आदि, वर्तमान, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, स्मृति ज्ञान की। दूसरा योग याद, मैं कौन और वो कौन। तीसरा दिव्य गुणों की स्मृति। दिव्य गुण जब भूल जाते हैं तो फिर क्या होते हैं? घबरा जाते हैं, फिर हंसते भी है, करना नहीं चाहिए था परंतु हो गया, गिल्ट कॉन्शियसनेस। बेहोशी में ही गलतियां होती है, जहां होश है वहां कोई गलती नहीं है। पाप और पुण्य की यही परिभाषा है। पाप अर्थात बेहोशी, पुण्य अर्थात होश, अवेयरनेस, स्मृति स्वरूप, अटेंशन, सतत अटेंशन। बाबा ने बहुत अच्छे दो शब्दों का प्रयोग किया, निरंतर और नेचुरल। ये दिव्य गुण भी कर्मों में कैसे समा जाए? निरंतर और नेचुरल, आह्वान भी ना करना पड़े। ये तब होगा जब स्मृति पुष्ट होगी, इतनी परिपक्व हो चुकी है भीतर से कि धीरे धीरे कर्मों में गुण दिखाई देने लगेंगे, धीरे धीरे। और चौथा, सेवा में स्मृति क्या? अभी कुछ लास्ट संडे के, लास्ट संडे की मुरली में भी कहा था बाबा ने, अगर असोच सेवा की वृद्धि करनी है तो क्या करो? असोच बन जाओ। मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति अनुसार फल मिलेगा, वो निमित्त बनाए मुझे करा रहा है तो क्या होगा? उसकी शक्ति जुड़ जाएगी और वो सर्वशक्तिवान है। बुद्धिमानों की बुद्धि, आगे की लाइन कौन पूरा करेगा? बुद्धिमानों की बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि क्या कहा? एथेंस ग्रुप, ग्रीस में एथेंस, सुकरात की भूमि। किसी को भी निमित्त बनाए अपना, अपनी सेवा निकाल सकता है, किसी को भी निमित्त बनाए तो कार्य उसका है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। मैं बहुत कम बुद्धिमान हूं परंतु वो महाबुद्धिमान है। तो मेरी स्मृति जब उससे जुड़ जाती है तो उसकी शक्ति या मुझ में आएगी। ये समझ में नहीं आ रहा है कितना कठिन है कुछ, स्वयं को उसके साथ जोड़ दो। वो सभी बुद्धिमानों की बुद्धि है, तेजस्वियों का तेज है, तपस्वियों का तप, सब कुछ उसमें समाहित है। तो सेवा में क्या सोचेंगे? विश्व कल्याणकारी हूं, निमित्त हूं। ये भूला कि फिर सफलता नहीं। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सभी में क्या याद रखेंगे? स्मृति। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी, ये भी स्मृति। खुशी से खाना, खुशी से उठना, खुशी से चलना, खुशी से सो सोना और खुशी से उठना, आंख खुली और क्या, फिर लेट, आंख खुली और खुशी का अनुभव। सोचा था 2 बजे उठना परंतु 10 मिनट पहले ही उठ गए, वाह तब खुशी होगी, 10 मिनट लेट उठे तो दुख होगा। सोए तो खुशी आराम ही, चलते हैं तो खुशी, उठते हैं तो खुशी। और स्मृति का आधार क्या है, और एक चीज बताई इसी मुरली में, भाग्य। भाग्य का आधार त्याग, परंतु त्याग ना दिखाई दे, भाग्य दिखाई दे। और त्याग तुमने किया भी क्या, क्या त्याग किया, क्या त्याग किया, कलर कपड़े छोड़ दिए, क्या हो गए, ब्यूटीफुल। अगर गिर भी जाओ तो दादी जानकी को क्या कहा था बाबा ने, पट्टी लगाई दी नहीं यहां पर, और ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई। तो गिर भी गए तो ब्यूटीफुल होने के लिए, फ्रैक्चर भी हो गया तो वाह 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 ब्यूटीफुल, बीमार भी पड़ गए तो ब्यूटीफुल, और क्या छोड़ा, गहने बहुत अच्छा किया, समझदारी का काम किया, चोरी नहीं तो चोर पीछे पड़ जाते थे, और क्या किया, खान पान छोड़ दिया, वो तो संसार के डॉक्टर्स भी कहते हैं कम खाओ सादा खाओ। तो तुमने किया क्या, किस बात का घमंड है कि हम इसके हाथ का नहीं खाते, उसके हाथ का नहीं खाते, हम बाहर का नहीं खाते, हम ये नहीं पहनते, हम वो नहीं पहनते। दो मित्र होते हैं, एक तो योगी बन जाता है, एक बहुत अमीर संसारी व्यक्ति बन जाता है। वो संसारी एक दिन अचानक अपने गरीब मित्र से मिलता है, वो फकीर होता है, वो फकीर उसे आमंत्रण देता है कि मेरी झोपड़ी में भी आओ। वो आता है, वो कहता है आज रात इधर ही रुक जाओ। उस अमीर व्यक्ति के लिए तो वहां रुकना मुश्किल है, क्योंकि उसे आदत है उधर है दनलप की तकिया। थोड़ी देर के बाद जब वो सो जाता है तो वो फकीर आता है, कहता है तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल देना। वो कहता है मुझे चाहिए भी हो तो तुम करोगे क्या, यहां तुम्हारी कुटिया में कुछ भी नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जो तुम्हें चाहिए उसके बगैर कैसे जिया जा सकता है। मैं उसे तुमको वो टेक्निक सिखाऊंगा कि कैसे ना कुछ में सब कुछ समाया हुआ है, द लेस इज मोर, मिनिमलिस्टिक टाइप ऑफ लिविंग। कल की मुरली थी, ये क्या है, बाबा ने क्या खोला है, हॉस्टल कॉलेज, कॉलेज में ज्यादा सामान नहीं होता है, होटल नहीं खोले है बाबा ने, तो सेंटर और घर भी कैसे दिखने चाहिए, आश्रम जैसे। इतना ही ना सजा दो कि आने वाले जिज्ञासु उन चीजों को ही देखते रहे और पूछे ये कितने का है, ये कितने का है, ये पर्दा कहां मिलेगा, ये भोग के ऊपर का कपड़ा बहुत अच्छा है। चम्मच तो बहुत ही अच्छा है। द लेस इज मोर, कम कम करते जाना है आवश्यकता है। जहां साधनाओं का अभाव है वहीं तपस्या होती है। इसके लिए मधुबन में जब आते तो तपस्या ज्यादा होती है, क्योंकि यहां जो घर में सारी सुविधाएं हैं, घर में जो जितनी सारी सामग्री है वो जिस कमरे में आप रहते हो वहां उतनी नहीं है। इसके लिए फोकस्ड अटेंशन रहता है। और क्या चाहिए, बाबा ने कहा बेफिक्र रहो, कोई चिंता नहीं, धन की भी कोई चिंता नहीं करो, पैसों की भी चिंता नहीं करो, धन तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, सोचते रहते हैं धन कहां से आएगा, धन कहां से आएगा, धन कहां से आएगा। बाबा की सेवा करनी है, धन कहां से आएगा? किसकी सेवा करनी है? उसकी ना, सावल शाह है वो, वो सोचेगा। तुम असोच बन जाओ, उसे पता है किसके द्वारा क्या कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, सब तुम ही करोगे क्या? और तकिया, तकिया तो मिल गई, परंतु फिक्र है तो नींद कैसी? इससे तो अच्छा है जमीन पे सोने का अभ्यास करो, वास्तव में अभ्यास करो, सारी बैक प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगी। और नींद भी अच्छी आएगी। और तकिया किसको बना लो? अपने बाहों को। तो भाग्य, भाग्य की श्रेष्ठ लकीर, अपने भाग्य का चिंतन करते रहना, अपने भाग्य को स्मृति में लाते रहना। मुझे क्या मिला है, मैंने क्या पाया है, यह अलौकिक संसार, ब्राह्मणों का संसार, एक एक आत्मा कितनी कितनी महान है। अगर एक एक की जीवन कहानी लिखी जाए और उसकी किताब बनाई जाए और हम वो पहले पढ़ ले, अभी उन लोगों को हम जानते नहीं है, उनका जीवन कहानी और नीचे नाम, जीवन कहानी नीचे नाम, और वो हर एक कहे कि मैं जब ऐसा था तो बाबा ने मुझे ऐसी मदद कर दी, मैं जब ऐसा कर रहा था तो बाबा ने मुझे ऐसे बता, हम सोचेंगे ये सब कौन लोग हैं जिसकी ये किताब है। और सोचो फिर वो सारे लोग, 50 लोग यही है। ऐसे मन में रखना है कि ये सब मुझसे महान है, क्योंकि हरेक को बाबा ने टच किया है, हरेक का चिंतन अपना अपना चिंतन है। इसके लिए हरेक को सुनो, क्योंकि भगवान ही उसे टच कर रहा है, उसे शक्ति दे रहा है। तो ये महान आत्माओं की सभा है। फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं। अब सारी मुरली का आधार एक ही शब्द कहा, स्मृति। लास्ट टाइम की मुरली का आधार दो शब्द थे, आना और जाना। किसी और मुरली के आधार तीन शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। किसी और मुरली का आधार पांच शब्द थे, पांच स्वरूपों का अभ्यास। किसी और मुरली का आधार छह शब्द थे, पांच विकार और एक आलस, इसको छोड़ो। किसी एक शब्द मुरली का आधार सात शब्द थे, सात स्वरूप आत्मा के, कभी आठ शक्तियां, कभी नौ निधियां, दस और बस। तो अब मूल प्रश्न है, बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनो, स्मृति स्वरूप बनाओ। टीचर अर्थात अपने स्मृति स्वरूप फीचर द्वारा दूसरों को भी स्मृति स्वरूप बनाए। टीचर अर्थात स्मृति स्वरूप नेचुरल, निरंतर, सहज, ये टीचर की परिभाषा थी। स्मृति स्वरूप टीचर अर्थात दूसरों को भी, जो विस्मृति वाले हैं उनको जगाए। टीचर अर्थात मस्तक पर मस्तक, मणि चमकता रहे, जैसे सांप मणि की तरफ देखो तो सांप नहीं देखेगा, वैसे जो हमें देखे अपना देहभान भूल जाए, ऐसी हमारी अपनी प्रैक्टिस चाहिए। फिर से वही प्रश्न, स्मृति स्वरूप कैसे बने, अर्थात निरंतर याद स्वरूप, अर्थात निरंतर याद रहे। सबसे पहली बात क्या करना है उसके लिए, अध्ययन। क्या करते रहना है? फर्स्ट अध्ययन, दूसरा दोहराओ, रिपीट करते रहना। संस्कार कब बनता है? जब एक विचार को बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार उसी विचार में घूमते रहना, सोचते रहना, डूबते रहना, तब वो विचार जाकर धीरे धीरे संस्कार बन जाता है। एक ही चिंतन, एक ही थॉट बार 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 रिपीट करना। तीसरा विजुलाइजेशन, उसको देखना, अलग अलग ड्रिल्स करना, जैसे आज की मुरली में भी लाइट हाउस माइट हाउस बन, क्या करो, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाओ। मेरा बाबा, बस इस एक मेरा बाबा में ही योग क्या बन जाएगा, शक्तिशाली। बस एक मेरा बाबा ही शब्द अलग अलग तरीके से इसी एक शब्द पर ड्रिल करना, अलग अलग रीति से, अलग अलग दिन में, अलग अलग संबंधों से आर्त पुकार निकले बाबा के लिए। सूरज भाई जी ने एक बार एक अनुभव सुनाया था, बहुत पहले की बात है। बाबा ओम शांति भवन में आए थे और उनको बहुत बुखार था, रात को 12 बज चुके थे और फिर 2:30 बजे कुछ गोली ली, फिर 2:30 बजे तक बुखार कम नहीं हुआ। बाबा आए हुए थे ओम शांति भवन में, मिलन चालू था, मुरली पूरी हो गई थी, ये लोग आ गए थे, वो पार्टियों से मिलना चालू था। तो फिर बुखार कम ही नहीं हुआ तो किचन डिपार्टमेंट में चिमन भाई थे तो चिमन भाई को बुलाया, भेजो बाबा से पूछो। तो वो गए सीधा, वो भोले भाले सीधा बाबा के पास चले गए। बाबा ने संतरा रखा था वो दे दिया, संतरा खाया सुबह तक बुखार खत्म। तो मेरा बाबा वो मेरा है, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसका अलग अलग रीति से अभ्यास, इसको विजुअलाइज करो, आकाश में लिखा हुआ देखो अग्नि के शब्दों से, अंतर मन में लिखा हुआ, हृदय में लिखा हुआ देखो, मस्तक पर लिखा हुआ देखो। अध्ययन, रेपिटिशन, विजुअलाइजेशन, उसके बाद में चिंतन, एक विचार लेना और उसका गहराई से चिंतन करना, चाहे 5 स्वरूप हो, चाहे दिव्य गुण हो, चाहे सेवा का संकल्प हो, मैं जो हूं जैसा हूं बाबा मुझसे करा रहा है, मैं जहां तक पहुंचा हूं मेरा कुछ भी नहीं है, बाबा ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। जितनी दादियां हैं उन सब का एक ही अनुभव है कि मम्मा बाबा ने ही हमें यहां तक पहुंचाया है, हमारा अपना कुछ है ही नहीं। चिंतन, बौद्धिक अंडरस्टैंडिंग तो है कॉन्शियस लेवल पर, परंतु वो सब कॉन्शियस में पेनेट्रेट करे, डीप अंतर्मन में चला जाए, उसके लिए क्या चाहिए दोहराव, उसके लिए क्या चाहिए विजुअलाइजेशन, उसके लिए क्या चाहिए रिपीटिशन, उसके लिए क्या चाहिए चिंतन, उसके लिए क्या चाहिए रीडिंग, उसके लिए क्या चाहिए चर्चा, नेक्स्ट डिस्कशन, डिस्कस करते रहना उसके बारे में, पढ़ते रहना, डिस्कस करते रहना। उसके लिए क्या चाहिए एकांत, उसके लिए क्या चाहिए मौन, उसके लिए क्या चाहिए अंतर्मुखता, तब स्मृति स्वरूप बनते हैं। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सोचते रहना, चिंतन करते रहना, मनन करते रहना, और जब योग में बैठे तो जैसे निर्विचार अवस्था हो जाए धीरे धीरे, माइंड हमारे वश में हो, तो स्वयं को देखना। एक योगी एक साधना कर रहा था, रात को घूमते रहता था, ये साधना थी उसकी कि चलते फिरते क्या मुझे याद रहता है मैं कौन हूं, क्या मुझे याद रहती है, बैठे बैठे जब ध्यान में बैठता हूं तो याद रहता है, परंतु जब चलता फिरता हूं तो याद रहता है। वो चलता है घूमता रहता है, देखता है थोड़ी दूरी पर एक दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही घूम रहा है, उसको लगता है ये भी किसी तरह की साधना कर रहा है। वो उसके पास जाता है, कहता है आप कौन सी साधना कर रहे हो, वो कहते मैं साधना वगैरह नहीं कर रहा हूं, मैं पहरेदार हूं, वॉचमैन, फिर से ये घर है इसकी मैं रखवाली कर रहा हूं। तो कहता है हम दोनों थोड़ी देर चले साथ में, वो कहता है चले, दोनों साथ साथ घूमते। और फिर वो योगी कहता है ठीक है अब मैं विदा लेता हूं, क्या आप मेरे यहां नौकरी करोगे। वो पहरेदार कहता है आपके साथ थोड़ा देर घूमा तो इतना सुखद आनंद अनुभव हुआ, मैं करना चाहूंगा, काम क्या है। वो कहता है वही काम जो तुम यहां कर रहे हो, वही वॉचमैन वाला, क्या पहरा देना है। वो कहता है तुम्हें मुझे याद दिलाना है, तुम्हारा काम क्या होगा मुझे याद दिलाना, यू हैव टू रिमाइंड मी व्हाट। वो बोलते एक चीज है मैं बार बार भूलते जाता हूं, वही चीज तुम मुझे रिमाइंड कराते जाना, रिमाइंड कराते जाना। वो कहते आखिर वो चीज क्या है। वो कहता है याद। वो कहता है किसकी याद। वो कहता है परमात्मा की याद और मृत्यु की याद, ये चीज मुझे भूलती जाती है, बस तुम्हें मुझे रिमाइंड कराते जाओ, क्योंकि मृत्यु और भगवान एकदम समान है। जैसे मृत्यु आती है सबसे पहले किसको याद किया जाता है, तो मृत्यु का आना अर्थात भगवान का आगमन, जिसके जीवन में कभी किसने भगवान को नहीं याद करना, मृत्यु आ जाए वहां पर, आई और चली जाए तब एकदम भगवान ही याद आ जाता है, दूसरा कोई याद नहीं आता है। तो ये दो चीजें भूलनी नहीं है। तो स्वयं को ही याद दिलाते रहना, मैं शरीर नहीं, नच भाति भूत संग, मैं वो शुद्ध आत्मा हूं, वो पवित्र आत्मा हूं, वो दिव्य आत्मा हूं, वो अलौकिक आत्मा हूं। अलौकिक जीवन है, अलौकिक नया जीवन है, ये खुशी का जीवन है, बेफिक्र बादशाही। ऐसी बादशाही और कोई है ही नहीं, बाबा ने कहा। इस बादशाही के आगे वो बादशाही भी क्या है, फिक्र है, चिंता है। यहां तुम निश्चिंत निष्पूर्ण हो गए हो, कोई चिंता ही नहीं। परंतु ऐसा निश्चिंत भी कौन हो सकता है? अभी मुरली चली थी बेफिक्र बादशाह पर, पहला करण करावन हार करा रहा है, दूसरा निश्चय हुआ ही पड़ा है, तीसरा असोच, चौथा नशा, पांचवा अमृत वेले क्या करो, फल खाओ शक्तिशाली, और अलौकिक स्मृति। तो क्या रहेंगे? निश्चिंत, बेफिक्र, चिंता नहीं। और एक बात थी मुरली में, आज्ञाकारी की, आज्ञा मान लिया, अर्थात क्या मिल गई? गुप्त दुआ, चाहे किसी की भी मानो, गुप्त दुआ। तो परमात्मा स्थान की महिमा, गुप्त दुआओं की महिमा, आज्ञाकारी की महिमा, निमित्त बनने की महिमा, कितनी सारी स्मृतियां एक ही मुरली में है। तो सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है, और विस्मृत ना हो इसके लिए स्मृति को पुष्ट करते जाना है, स्मृति को परिपक्व बनाते जाना है। अधिक से अधिक मौन, जो भट्टी के लिए आए वो संपूर्ण मौन, और जो यहीं रहते हैं वो इंटरमिटेंट मौन, बीच बीच में। सेवा करो, सेवा पूरी हुई फिर मौन, सेवा पूरी हुई फिर एकांत, सेवा पूरी हुई फिर अंतर्मुक्ता। और जो आए हैं खास, तीन ही दिन के लिए आए हैं, तीन दिन में बहुत कुछ करना है, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे कैसे असमर्थ आत्माओं को, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे निमित्त आत्माओं को, ऐसे रचता और रचना की स्मृति रखने वाली आत्माओं को, ऐसे पांच स्वरूपों का अभ्यास करने वाली आत्माओं को, ऐसे आज्ञाकारी आत्माओं को, ऐसे परमात्मा स्थान पर आने वाली आत्माओं को, ऐसे महावीर आत्माओं को। कितना अच्छी बात बोली है बाबा ने कि स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर आत्माओं को याद प्यार, स्मृति की क्या करो, लहर फैलाओ। और एक विधि है स्मृति की, अलग अलग जगह लिख के रखो, राइटिंग, ये भी एक विधि है। भूलो तो बाबा कहते हैं चुटकी दो खुद को। और ऐसे न्यारे प्यारे आत्माओं को, ऐसे परमात्मा छत्र छाया में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे कम खाने वाली आत्माओं को, गम खाने वाली आत्माओं को, ऐसे त्याग नहीं, ये भी कोई त्याग है तुम्हारा, क्या छोड़ा तुमने, कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसे साइड सीन समझने वाली परिस्थिति, विघ्न, समस्या, मुश्किल, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स को क्या समझना है, खेल, साइड सीन, और नथिंग न्यू समझने वाली आत्माओं को, ऐसे ब्यूटीफुल आत्माओं को, ऐसे एंजल्स को, ऐसे परियों को, ऐसे दाल रोटी, बाबा ने कहा गारंटी है बाबा की, वो 36 प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा, परंतु जहां खुशी है वहां दाल रोटी में भी क्या है, 36 प्रकार का भोजन है, सब कुछ मन के ऊपर। अगर दाल रोटी भी नहीं मिले, सुबह शिलू बहन जी कह रहे थे ना, ऊपर बाबा तुमको इमर्ज करके शुभी रस पिला देगा, अगर कुछ भी ना मिले तो वर्स्ट एकदम। पर ऐसा होगा नहीं, तुम भी खाओगे, तुम्हारे पोत्र धोत्र भी खाएंगे, तुम्हारा कल्याण हुआ है तो उनका कल्याण भी होगा। ऐसे ऐसे धरनी में सोने वाली आत्माओं को, ऐसे वो विस्मृति का दिखाते हैं ना, कर्ण को विस्मृति हो गई शाप के कारण, तो विस्मृति हो गई तो हार हो गई, और जहां स्मृति है, जैसे हनुमान को स्मृति दिलाई जामवन ने तो शक्ति आ गई, जैसे जैसे कौन है वो दुष्यंत को स्मृति दिलाई, वो अंगूठी देखी तो एकदम शकुंतला की याद आ गई, पावर आ गई। तो ऐसे ऐसे साक्षी स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे मेरा बाबा से शक्तिशाली योग बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे तेरे को मेरे में, अच्छा ऐसे लौकिक में रहते हुए संसारी आत्माओं के साथ रहते हुए भी मन अलौकिक ईश्वरीय संसार में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे सुखमय जीवन वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ जीवन वाली आत्माओं को, ऐसे सफलता संपन्न जीवन वाली आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता सो देवता ब्राह्मण सो फरिश्ता सो फरिश्ता सो देवता आत्माओं को, ऐसे अलर्ट अटेंशन, ऐसे ज्ञान योग धारणा सेवा चारों में स्मृति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे समय पर स्मृति या याद आने वाली आत्माओं को, ऐसे पास विद ऑनर आत्माओं को, ऐसे मायाजीत, ऐसे आज का बताओ, हफ्ते भर का नहीं बताना है ऐसे आज का हर दिन की मुरली ऐसे पढ़ो कि बस अभी मुझे इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है, आज सारे दिन भर ये जो है एक एक शब्द एक एक पॉइंट ऐसा चिंतन करना है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, विजुलाइज रिपीटेशन डिस्कशन पढ़ते जाओ लिखते जाओ, उसी में बुद्धि घूमती रहे इर्द गिर्द, तब वो स्मृति स्वरूप की अवस्था आएगी। तो ऐसे स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।